ஓம் தியாயே நித்யம் மகேசம் ரஜத கிரி நிபம் சாரு சந்திராவதம்சம் ரத்னாகல்பஜ்வலங்கம் பரசுமிருகவர வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதம் அமரகணர் வ்யக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வபந்தியம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌடபதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்யசிஷ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்ம பாதஞ்ச ஹஸ்தமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திக காரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி விசுத்த ஜான தேஹாய த்ரிவேதி திவ்ய சக்ஷுஷே ஸ்ரேய ப்ராப்தி நிமித்தாய நம சோமார்த்தாரிணே ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷ மாம் சந்திரசேகர சந்திர ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம் ராம ராகவ ராம கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷ மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷ மாம் சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர Chandrasekhara, Chandrasekhara, Pahi Mam. Chandrasekhara, 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 Raksha Mam. Chandrasekhara, Chandra, Chandrasekhara, Raksha Mam. Chandrasekhara, Raksha Mam. Chandrasekhara, Raksha Mam. Oh, oh, oh. Primpuri Ashram, Ayojit, Krishna Kumar Daya, Gita Chintan Mala Antargat, Adi Guru Shankaracharya Virachit, Shivananda Lahari. Is Istotra Ke Adhar Par, लगातार चार वर्षों से चर्चा चल रही है तो इस बार इस 100 श्लोक का स्तोत्र की व्याख्या पूरा करने का लक्ष्य है अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 91 गाड़ी स्टेशन में पहुंच रही है Adhya vidya ridgata nirgata sid vidya ridya ridgata tat prasada seve nityam srikaram tat padabjam Bhave Muktir Vajanam Rajamaule Duri Kritani Duritani Durakcharani Dorbhagya Dukkha Durahankriti Durvachamsi Saram Tadiya Charitam Nitaram Pivantam Gauri Sabamiha Samuttara Satkatakchai Komalakaladhara Maulau Somakaladhara Maulau Komala Ghanakandhare Mahamahasi Swamini Girijanathe Mamaka Hridayam Nirantaram Ramatam Sarasana Tenayane Taveva Karau Sa Eva Krita Krityahu Ya Ye Yo Yo Bhargam Vadati Chete Sadar Chatasmarati Atimridulau Mama Charanau Atikathinam Te Mano Bhavani Sa Atikathinam Te Mano Bhavani Sa इति विचिकित्सां संत्यज शिव कथमासीत् गिरौ तथा वेशः धैर्यांकुशेन निवृतं रवसा रवसादाकृष्य भक्तिश्रृंखलया पुरहरचरणानाले हृदयमदेवं बधान चिन्यंत्रई। प्रसंग चल रहा है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सान्निध्य में ये सारी भाव व्यक्त कर रहे हैं। जीवन की जो कृतकृत्यता है, व्यक्ति जब जीवन की कृतकृत्यता का अनुभव करता है, भगवान को धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता। भक्त भगवान को इस तरह कहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव से इस तरह कह रहे हैं, आद्य विद्या ऋग्गता निर्गता सित विद्या ऋद्या ऋद्गता तत्प्रसाद। सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावे मुक्तिर् भाजनं राजमौले। इस श्लोक में संबोधन है राजमौले। भगवान शिव का नाम है राजमौली, राजमौलेश्वर। संबोधन में हे राजमौले, राजाओं के सिर मुकुट, संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, चाहे वह नरेश हो, चाहे वह देवेश हो, राजेंद्र हो, चाहे देवेंद्र हो, सबकी शोभा सिर में मुकुट नहीं है तो उनकी की शोभा नहीं है। राजाओं की शोभा उनके सिर में दिव्य रत्नों से युक्त मुकुट से होती है। अभिप्राय यह है कि भगवान शिव भक्ति यदि मस्तिष्क में न हो, विचार में न हो, वो सब क्षुद्र जीवन है। और जब राजाओं की गणना होती है, चाहे देवलोक की राजाओं की गणना हो, चाहे नरलोक की राजाओं की गणना हो, सबसे ऊपर भगवान शिव महाराज है, राजमौले। मौल शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क, सिर, सिर मुकुट। ये राजमौली संबोधन से भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं संबोधन से। ये राजमौली तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, त्वत् प्रसादात्, आपकी प्रसन्नता से, आपकी कृपा से, आद्या विद्या हृदगता निर्गता आसीत्। मुंडक उपनिषद में एक श्रुति आती है, मंत्र है, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेना एमे वेशा वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य, ये आत्मा बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न लभ्य, अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य। दोनों है, बलहीनेन वे प्रवचनेन भी है, दो जगह अलग अलग पाठ है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य ये भी है, अयम आत्मा बहु प्रवचनेन न लभ्य, प्रवचनेन न लभ्य। जिस आत्मा को तुम चाह रहे हो, परमात्मा को तुम चाह रहे हो, हम चाह रहे हैं, वो आत्मा प्रवचन के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। न बहुना श्रुतेना, जीवन भर सुनते रहने से भी वो मिलने वाला नहीं है। फिर महाराज वो मिलता कैसे है? तो वहां उत्तर दिया है उपनिषद ने, स्वयं उपनिषद ने उसकी उपलब्धि का माध्यम भी बता दिया है। एमे वेश वृणुते तेन लभ्य, जिसने आत्मा को जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है वह परमात्मा, वो आत्मा जिसको ये चाहता है कि ये मुझे प्राप्त कर ले, वृणुते, ऐसा आत्मा यम वृणुते, वह परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है, जिसका वर्ण कर लेता मतलब परमात्मा ये संकल्प करता है ये व्यक्ति मेरा अनुभव करे, ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करे, मेरा दर्शन करे, मेरा अनुभव प्राप्त करे, एम ए वे सृणुते तेन लभ्य, तो उसी के द्वारा वो आत्मा उपलब्ध हो सकता है। ये बड़ा विचित्र मंत्र है, वह हमें वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें, हम उसको वरण करें और हम उसको प्राप्त करें ऐसा नहीं है, वो हमारा वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें। देखो इस मंत्र का ही अर्थ है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो हमें वरण करता फिरे? उसको क्या पड़ी है? वो हमको खोजता फिरे, हमको वरण करता फिरे, हैं, उसको क्या पढ़ेंगे? क्या हमें वरण किए बिना उसका काम रुक रहा है क्या? और शायद आप और हम तो यही मानते हैं कि महाराज हमारे बिना आपका काम कैसे चल रहा है। तो कभी कभी तो हमें ऐसे भ्रांति होती है कि मन में न होता ईश्वर के संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ाती। ये तो हम हैं इसीलिए हम सब कर रहे हैं। जबकि ये बात नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने ढंग की है। इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है बोलो? इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है? कहां हमारी गणना होगी? फिर भी हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूं गणना के क्रम में। ये अहम है। और उपनिषद का मंत्र यह है कि वह स्वीकार करे तब हमको प्राप्त हो, उसकी कृपा हो तो हमें वो प्राप्त हो। पुराणों की कथा है, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं पुराणों में। कहते हैं ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने ऐसे मनोरंजनात्मक भाव से व्याख्या किया है। उनकी शैली बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि एक बार जीवात्माओं को और परमात्मा दोनों के बीच में खेलने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करें, मनोरंजन करें। तो कौन सा खेल खेलें? बोले छिपने का खेल खेलें, छुपा छुपी खेल खेलें। आप लोग खेले कि नहीं? नहीं पता नहीं क्या खेले होंगे। बच्चे लोग करते हैं ना, कुर्सी के नीचे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो बोले कि ठीक है खेलते हैं। तो दो टीम हो गए, एक परमात्मा अकेला एक तरफ और सारे जीवात्मा एक तरफ। परमात्मा ने कहा कि तुम लोग सब छुप जाओ और हम अकेले खोजेंगे तुमको। जीवात्मा ने कहा कि ठीक है हम छुप जाएंगे। तो जीवात्मा छुपने लगे, अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने हिसाब से सब जीवात्मा छुपे। कहां छुपेंगे भाई? जीवात्मा कहां छुपेंगे? कोई हाथी के शरीर में छुप गया, कोई चींटी के शरीर में छुप गया, कोई मक्खी के शरीर में छुप गया, कोई मच्छर के शरीर में छुप गया, कोई कॉकरोच के शरीर में छुप गया। यही तो छुपने का स्थान है। जीवात्मा छुपेगा तो कहां छुपेगा? यही सब छुपेगा। और तुम और हम कुछ समझदार थे तो इन इन शरीरों में छुप गए, है ना? बहुत से जीवात्मा थे, अपने अपने छुपने के कारण ये अलग अलग 84 लाख योनि हो गए, ये सब में छुप गए। और सब जीवों ने कहा कि महाराज अब हम अच्छी तरह छुप गए हैं, पता लगाओ कि हम कहां छुपे हैं, पता लगाओ। तो परमात्मा ने कहा, फलाना फलाने शरीर में छुपा है, फलाना फलाने शरीर में छुपा है, नाम ले एक जगह बैठे बैठे नाम पुकार पुकार के कह दिया कि तू वहां छुपा है। हे आत्मानंद तू इस शरीर में छुपा है। अरे तेरे को कैसे पता चला? हे मोहनीश तू इस शरीर में छुपा है। ले किसी को कहा कि अरे तू हाथी के शरीर में छुपा, तू चींटे के शरीर में छुपा, तू कुत्ते के शरीर में छुपा, तू सुअर के शरीर में छुपा, तू मच्छर के शरीर में, तू मक्खी के शरीर में, तू मच्छर के शरीर में। वाह क्या कहना है, बोलो है कि नहीं, छुपा है कि नहीं, बोलो। अरे इसने तो पता लगा लिया। मोहनीश कहेगा कि मैं इस शरीर में नहीं छुपा हूं, बोलो। और आत्मानंद कब पाएगा कि इस शरीर में मैं छुपा नहीं हूं, बोलो। तुम लोग कब पाओगे कि मैं इस शरीर में नहीं हूं? उसने तो नाम पुकार पुकार कर कह दिया, तू फलाने तू फलाने तू फलाने। अरे बाबा इसने तो छुप लिया, खोज लिया, हम हार गए, पता लगा लिया। अभी तो हारे और जीते हैं, इसका निर्णय तो अब बारी आई परमात्मा को छुपने की। बोले भाई तुम लोग सब छुपे हो और हमने पता लगा ली। लगाई कि नहीं? बोले हां तुमने पता लगा लिया, हां तुमने जहां जहां कहा है हम वहीं वहीं छुपे हैं, ठीक कह रहे हो। बोले कि ठीक है, वहीं मस्ती से खाओ पियो मौज करो, चिंता नहीं करना, वहीं छुपे रहो, कोई खाओ पियो मौज करो। अब हम छुपे? बोले हां तुम छुपो। तो परमात्मा छुपने की कोशिश करने लगा, कहां छुपू? विचार किया, ये जीवात्मा परांजिकानी वितृणत स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति। मैं दुनिया के बाहर कहीं भी छुपूंगा तो ये सब पता लगाकर छोड़ेंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं जीतूंगा तो तब मैंने इनको पता लगा लिया, ये मुझे पता नहीं पाएंगे तभी मैं जीतूंगा। समझे कि नहीं? इन्होंने मुझे पता लगा लिया, मैंने इनको पता लिया, तो हार जीत का कोई मतलब ही नहीं हुआ। कहां छुपे? बोले ये सारे जीव जहां जहां छुपे थे वहीं वहीं जाकर बैठ जाऊं। अब इनकी आदत है बाहर खोजने की, बाहर हम छुपेंगे नहीं, छुपेंगे अंदर ही। बड़े बुद्धि लगा लिया और जाके वहीं छुप के बैठ गए। कहा? अरे तुम जहां छुपे थे वहीं छुप गए हो, तुम स्त्री के शरीर में छुपे थे तो वो भी आकर वहीं छुप गए, तुम परिस के शरीर में छुपे थे तो वो भी वहीं आकर छुप गया, तुम कुत्ते के शरीर में छुपे थे तो वो भी छुप गया, वही हाथी के शरीर में छुप गए थे तो वहीं छुप गया वो। एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को समझाया, ऐसा आत्मा परमात्मा सर्वेषु भूतेषु, जीवात्मा जहां जहां छुपे हैं वहीं वहीं जाकर वो गूढ़ा छुप के बैठ गया। और परमात्मा ने कह दिया कि ए सब लोग अब खोजो, तुम लोग मैं छुप चुका हूं, खोजो पता लगाओ। तो खोजने के लिए निकले आत्मानंद, काशी गया, मोहनीश बना वहां हरिद्वार गया, चिमन भाई बद्रीनाथ गए, रमण भाई द्वारिका गए, कहां गए खोजने गए सब, कहां होगा कहां होगा कहां होगा, मिला द्वारिका में नहीं मिला, बद्रीनाथ मिला मिला नहीं मिला, हरिद्वार में मिला आज तक किसी को मिला नहीं वो, और खोजना छोड़ नहीं रहे। हां मंदिर मिल गया, मूर्ति मिल गई, परमात्मा नहीं मिला है ना। काशी गए, मंदिर भी मिला मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। द्वारिका गए, बड़ा भारी मंदिर भी मिला मूर्ति भी मिली, परमात्मा नहीं मिले। हरिद्वार गए, मंदिर मिला मूर्ति मिली, परमात्मा। आज तक तुम लोगों को मंदिर और मूर्ति ही तो मिल रहे हैं, है ना, बोलो परमात्मा मिला है? नहीं मिला क्योंकि हम ये मानते हैं कि परमात्मा मंदिर और मूर्तियों में रहता है। और परमात्मा ने ऐसे विचित्र खेल खेली, बाहर मंदिर और मूर्ति बनाकर रख दी और अपने आप छुप गया, अंदर हृदय में जाकर छुप गया। देव जी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी जगह आकर बैठ सकता है जहां हम बैठे हैं वहीं आकर वो बैठ सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। तो जिन्होंने नहीं सोचा है उनको हजारों साल खोजने पर भी नहीं मिला है। तब कठोपनिषद में कहा एस सर्वेशु भूतेषु गोड़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी तच्चिद्धीरा प्रत्यगात्मान इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन अन्यथा तो परांचिकानि वितरण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति न अंतरात्मा पश्यति। हर व्यक्ति खोजने के नाम में बाहर खोज रहा है और अंदर तो खोज ही नहीं रहा है। कोई कोई समझदार व्यक्ति है, अंदर भी खोजना चाहिए, अंदर मैं हो सकता हूं तो वो नहीं हो सकता, ये बुद्धि क्यों नहीं आई? अंदर मैं हो सकता हूं तो वह क्यों नहीं हो सकता है? और जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी तब तक वो मिलने वाला नहीं है। कच्ची धीरा किसी किसी धीर पुरुष में ये बुद्धि आती है, तब वह आवृत्त चक्षु बाहर खोजने को छोड़कर अंदर ही खोजता है। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं ना कि कोई एक मुसलमान सूफी संत महिला हुई, वो सूफी थी संत थी, उसका नाम राबिया कहते हैं, नहीं ऐसा नाम रखा है तो बहुत सुने हुए दृष्टांत है। विचित्र की थी वो, रमजान का महीना था तो और के मक्का मदीना जाने का समय था, सब लोग कहने लगे कि चलो तीर्थ जाएं, मक्का जाएं, मदीना जाएं, हज करें है? तो सब तैयारी करने लगे। उसको कहा कि तू तैयारी नहीं कर रहे, तू नहीं जा रही है? बोले हाँ चलेंगे, हम भी चलेंगे। चल चल तैयार हो, कल सुबह इतनी बजे जाना है। अच्छी बात है। तो सब तैयारी हुई तो दूसरे दिन सभी साथी यात्री तैयार हो गए। बोले वो बाहर नहीं आ रही है, बस खड़ी है। अरे राबिया क्यों नहीं आई है, लेट हो रहा है, जल्दी आ जा। बोले आई आई मैं अभी आ गई। जाना नहीं है क्या? बोले जाना तो जरूरी है, तो फिर क्यों लेट करती है? क्या बताऊं, मेरे ब्लाउज का एक बटन टूट गया तो उस बटन लगाऊं उसके लिए मैं सुई खोज रही हूं और लगाए बिना मैं कैसे जाऊं, पता नहीं कहां खो गया। तुम लोग भी मदद करो ना। बेचारे बस में चढ़े हुए सब यात्री उतर के आ गए और सुई खोजने में लग गए। तो राबिया सुई कहां खोज रही है? कहते हैं कि बाहर, घर के बाहर आंगन में, जहां प्रतिदिन झाड़ू लगा लगा के कचरा फेंका करते थे, वहीं जाकर खोजने लगी। क्या खोज रही है? बोले सुई खो गया है, खोज रही हूं, तो उसके बिना बटन लगाया नहीं जाएगा। तुम लोग भी खोजो, खोजने लगे। अरे भाई सुई कहां गिर गई थी? बोले गिरी तो घर में गिरी थी तो घर में, क्योंकि रखा घर में ही था, खोई तो घर में ही है। बोले घर में खोजा कि नहीं? नहीं, कल भी एक पड़ोसी आया था, यहीं खोज रहा था, उसका भी एक सामान खो गया था, वो यहीं खोज रहा था। परसों दूसरा पड़ोसी आया था, वो भी यहीं खोज रहा था अपना सामान। तो हमने सोचा कि कोई भी सामान खो जाता है तो मिलने का जगह यही है, इसलिए यहीं खोजने लग रहे। बोले पहले तो जहां खोया है वहां खोजो। बोले वो तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, चलो। बोले सब लोग आए, कहते घर में, घर में आए तो घर के अंदर ही सुई मिल गई। लोगों ने कहा कि तू पागल है, सुई गिरी घर में, घर में खोजे बिना बाहर खोज रही है। बोले ठीक है, हम तो पागल है ही है और तुम भी पागल हो, है? परमात्मा बैठा है अंदर और तुम मक्का मदीना खोजने जा रहे हो, तो अंदर खोजा तुमने, अंदर देखा? बोले अंदर तो देखा नहीं, हमारा बाप भी जो मक्का गया था, हमारे दादा भी मक्का गए थे हज करने, तो परंपरा बनी है सभी मक्का जाकर हज करके आते हैं। अरे बाबा, वो परमात्मा जब अंदर बैठा है, अंदर छुपा है, तो जहां छुपा है वहीं न खोजना चाहिए। तो मक्का जाना हो तुम लोग जाओ, मैं तो मक्का पहुंच गई हूं क्यों, उसको तो मिले मिला है, वो तो अंदर खोज रही है, उसका मक्का तो अंदर है, मक्का मदीना तो अंदर है। कश्चित धीरा, इतने सारे मुल्लों में से वो एक राबिया हुई जिसके मक्का मदीना अंदर था, बाकी के मक्का मदीना तो बाहर ही है। क्या सुंदर भाव है। तत्प्रसादात, शंकराचार्य कहते हैं कि महाराज आपकी कृपा से, शिवजी को कह रहे हैं शंकराचार्य, हे भगवान आपकी ही कृपा से, आद्या अविद्या अविद्या का विशेषण है आद्य, हालांकि अविद्या अनादि है। अविद्या खुद क्या है? अनादि है। षडैते अनादयः, वेदांत में छह वस्तु को अनादि बोलते हैं, समझे नहीं? ब्रह्म अनादि है, माया अनादि है, ईश्वर अनादि है, जीव अनादि है, जगत अनादि है, और इनका परस्पर संबंध अनादि है। ये हमने कई बार कहा है प्रसंगों में, छह वस्तु क्या है? अनादि है। जगत कब से शुरू हुआ, जगत कब से शुरू हुआ, स्टार्ट डे इसका कोई रिकॉर्ड है कहीं? शुरू हुआ लेकिन कब से शुरू हुआ, कोई 16,000 वर्ष कहता है, कोई 20,000 वर्ष पहले था कहते हैं, कोई कुछ कहते, कुछ भी बोले जा रहे हैं सब। जीव कब से जीव बना है, तुम जीव हो कि नहीं बोलो, है जीव हो ना, तो किस दिन से जीव बने हो तुम? है रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? शरीर किस दिन पैदा हुआ है वो तो तुम्हारे पास होगा, है ना, बर्थडे होगा ना शरीर का। अच्छा तुम्हारा बर्थडे कब है, जीव कब जीव बना था, है जीव कब जीव बना है? अनादि, कोई बता नहीं सकता है कि मैं इस दिन जीव बना। माया कब माया बनी बोलो, अनादि। ईश्वर कब ईश्वर बना, अनादि। ब्रह्म कब ब्रह्म बना, अनादि। सड़ेते अनादय, ये छह वस्तु अनादि है, लेकिन ये छह अनादि में से एक अनंत है, उसका अंत भी संभव नहीं है, बाकी सबका अंत होता है। और पांच वस्तु अनादि शांत है, समझे कि नहीं? और पांच वस्तु अनादि शांत है, एक वस्तु अनादि अनंत है, ब्रह्म अनादि अनंत है, बाकी सब अनादि शांत है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने के बाद माया का अविद्या का अंत हो जाता है, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक माया का अंत नहीं होगा, लेकिन जब भी ब्रह्म ज्ञान होगा आत्मज्ञान होगा माया अविद्या का अंत हो जाएगा। माया और अविद्या का अंत हुआ तो जिस माया से ईश्वर भाव खड़ा हुआ था और जिस अविद्या से जीव भाव खड़ा हुआ था दोनों का भी अंत हो गया। और माया का अंत हुआ तो जिस माया के चलते जगत भाव खड़ा हुआ था उसका भी अंत हुआ। निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय, जिस निमित्त से जो खड़ा था, जो भाव तैयार हुआ था, वो निमित्त गया तो नैमित्तिक गए। बिजली के द्वारा एसी चलने से कमरा ठंडा हुआ था, बिजली यदि चली जाए तो एसी बंद हो जाए, एसी बंद हो जाए तो कमरा क्या ठंडा रहेगा? जिस निमित्त से जो भाव खड़ा हुआ है वो निमित्त जाते ही नैमित्तिक भी चला जाएगा। इसीलिए माया अविद्या के चलते ईश्वर और जीव भाव खड़ा हुआ था और माया अविद्या के चलते ही जगत भाव खड़ा हुआ था और माया अविद्या के चलते ही परस्पर जीव ईश्वर जगत इनका संबंध चला था। जीव सेवक है और ईश्वर सेव्य हो गया। ईश्वर और जीव के बीच में कौन सा संबंध हुआ? सेव्य सेवक भाव संबंध। अच्छा जीव और जगत के बीच में कौन सा भाव संबंध हुआ? भोग्य भोक्ता भाव संबंध। जगत में कौन सा भाव आ गया? भोग्य भाव। और जीव में कौन सा भाव आ गया? भोक्ता भाव।
और इसी तरह परमात्मा में और जगत में कौन सा भाव संबंध आ गया? जन्य जनक भाव संबंध आ गया। परमात्मा उपादान का निमित्त कारण रूप जनक बन गया और जगत कार्य रूप जन्य बन गया। ये परस्पर संबंध है इनका, और ये सारा संबंध किससे खड़ा हुआ? तो उसी माया से। और माया अविद्या चला गया तो संबंध भी चला जाएगा कि नहीं? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शिव से स्तुति करते हुए कहते हैं, हे राजमौले तत्प्रसादात, आपकी बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर। आद्या विद्या, आद्य शब्द से कारण रूपा विद्या, हालांकि अविद्या अनादि है, फिर भी सबका कारण रूप होने के कारण उस अविद्या को क्या कहा? आद्या अविद्या। आद्य माने पहला कारण। रामगीता में भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया ना, अज्ञान में वास्य ही मूल कारण है। लक्ष्मण, अस्य सारा संसारस्य जगतस्य मूल कारणम अज्ञान, तदहानमेवात्र विदो विधीयते। ब्रह्म विद्या का पूरा कोशिश यही है कि वो आद्या अविद्या, पहली जो अविद्या जगत कारण रूप रूपा जीव ईश्वर जगत आदि को निर्माण करने का पहले कारण रूपा अविद्या, ये अविद्या कहां थी? बोलो कहां थी? ये हृदगता। आद्या विद्या हृदगता, हृदगता माने हृदय में ही रहने वाली अविद्या। ऐसा नहीं है अविद्या ने जीव को बनाया और अविद्या कहीं और जगह रह गई और जीव कहीं और जगह रह गया, ऐसा नहीं। उसी हृदय में ही अविद्या भी है। परमात्मा को न जानने का जो मूल कारण है आवरण शक्ति, वो कहां है? हृदय में। इसलिए अविद्या आद्य अविद्या हृदगता, हृदयस्थ अविद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा आवृत हो रहा है। ये देखो, हृदयस्थ मूलाविद्या के द्वारा हृदयस्थ परमात्मा क्या हुआ? आवृत हुआ, ढका हुआ है। परिणाम यह हुआ कि हृदयस्थ जीवात्मा हृदयस्थ परमात्मा को नहीं जान पा रहा है। वो लुका छिपी है, परमात्मा वहां छुप गए, अब जीवात्मा खोजे फिर रहा है, जहां छुपे वहां पहुंचकर खोजता नहीं है, वहां पहुंचता ही नहीं, तो कहां से मिलेगा उसको? तो कहता परमात्मा नहीं मिले। निर्गता, आपकी कृपा से सबसे पहला काम क्या हुआ? हृदगता आद्य अविद्या निर्गता, हृदय में अनादिकाल से रहने वाली मूला विद्या आपके प्रभाव से कृपा से प्रसाद से निर्गता नष्ट हो गया, चला गया, हट गया। तो फिर हृदय में क्या आ गया महाराज? तो अविद्या चला गया, फिर आ सकता है कि नहीं? अविद्या फिर आ सकती है कि नहीं? बोले अब तो नहीं आएगी। क्यों? हृद्या विद्या हृदगता तत्प्रसादा, उस अविद्या के जगह उस हृदय में विद्या हृदया हृदय में रहने वाली विद्या ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान और विद्या हृदगता वो हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गई। समझे कि नहीं? आदि अविद्या हृदगत हृदयस्थ अनादि यानी सारे जगत का कारण रूप अविद्या निकल के गया और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म विद्या हृदय में अब प्रतिष्ठित हो गया है। अब उसके हृदय में रहते हुए अविद्या दोबारा आने की संभावना नहीं है।
सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जम्।
हे भगवान, अब मैं सारे संसार और सांसारिक पदार्थों को छोड़कर नित्य निरंतर श्रीकरं श्री माने श्रेय करोति इति श्रीकर कल्याणकार कारक हम जीवों का कल्याण करने वाले आप श्रीकरम त्वत्पदाब्जम आपके चरण रूपी कमल अब्ज अब्ज अप माने जल तस्मा जाता अब्ज कमल चरण कमल
आपका जो चरण कमल है क्या है? बोले श्रीकरम हमारे कल्याण करने वाला है, इसलिए मैं अब नित्य निरंतर कल्याणकारी आपके उस चरण कमल का सेवे मैं अब सेवन करूंगा।
अभी तक संसार और सांसारिक विषयों का सेवन करने के कारण मैं भवाटवी में पड़ गया था, भवसागर में पड़ गया था, भवाटवी में पड़ गया था, भवारण्य में पड़ गया, भटक गया था। आपके कृपा से अंधकार छंट गया, प्रकाश आ गया, अब मैं भटकूंगा नहीं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शुक्ल यजुर्वेद बांदे दिनी शाखा रुद्र संहिता रुद्रीयम में पहला अध्याय में संकल्प शिव संकल्प सूक्त है, छह ऋचा का, छह मंत्रों का शिव संकल्प सूक्त है जो हम लोग रोज पाठ करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन् तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे शिव, मे मनः आपकी कृपा से मुझे एक मन नामक तत्व अनादिकाल से मेरे अस्तित्व काल से ही मुझे प्राप्त हुआ है। आपने बड़ी कृपा करके मुझे एक मन नाम का साधन दिया है, लेकिन मैं उस मन से जुड़कर अनादिकाल से अभी तक अशिव संकल्प करता रहा। शिव माने परमात्मा आत्मा, अशिव माने अनात्मा संसार विषय। मैं उसी विषय का चिंतन करता रहा, विषय का सेवन करता रहा, विषय भोग करता रहा और विषय अशिव होने के कारण अनादिकाल से आज तक मैं संसार में भटकता रहा। अब मेरा वह मन सर्वथा शिवा संकल्प करने वाला होवे, अशिव संकल्प कभी न करे, विषयों का चिंतन कभी न करे, निर्विशेष परमात्मा का ही चिंतन करे। जो कि जागृत में दूरम उदयति, मन जागृत अवस्था में कहां से कहां नहीं पहुंचता, दूर से दूर चला जाता है। दूरम उदयति, अमेरिका जाता है, लंदन जाता है, बोलो पहुंच गया कि नहीं, अमेरिका पहुंचा कि नहीं, बोलो लंदन पहुंचा कि नहीं। आपके बहू बेटे अमेरिका लंदन में होंगे, फट से पहुंच गया वो, है बैठे कि नाम लिया कि पहुंच गए, वो देखो नाम लिया पहुंच गया। अरे कितनी जल्दी पहुंचता है, दूरम उदयति, ये जागृतो दूरम उदयति तदु सुप्तस्य तथैवेति, स्वप्न में भी पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। दूरंगमन ज्योति खान ज्योति रेखन, वो स्वयं अंधकार में भी पहुंच जाता है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता है वो, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश, उसके पास प्रकाश है, उसको अंधकार बाधित नहीं करता। तन में मनम, ऐसा मेरा मन शिव संकल्प अस्तु हो, अब नित्य निरंतर शिव संकल्प करे, अशिव संकल्प न करे। मांद्यन्यानी शाखा शुक्ल यजुर्वेदीय, ये मंत्र है शिव संकल्प सूक्त के, ऐसे छह सूक्त हैं। लगभग वही बात यहां शंकराचार्य जी कहते हैं, सेवे नित्यम श्रीकरम त्वत्पदाब्जम। आपके चरण की विशेषता यह है कि जिसने आपके चरण की स्मरण की उसका कल्याण हुआ है, इसलिए श्रीकर है आपका चरण। नित्यम सेवे, भावे मुक्तिर्भाजनम राजमौले, हे राजमौले मैं इसी जन्म में मुक्ति का भाजन पात्र बनूं, मुक्ति मोक्ष प्राप्त करूं। आद्या अविद्या, अविद्या क्या है, अविद्या के चार अंग हैं, अविद्या के चार अंग हैं। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है और इसी तरह जगद्धर भट्ट ने भी उसकी व्याख्या की है, अविद्या के चार अंग हैं। अनित्य में नित्य बुद्धि अविद्या का प्रथम अंग है, अपवित्र में पवित्रता बुद्धि ये दूसरा अंग है, अनात्मा में आत्मबुद्धि या विद्या का तीसरा अंग है, दुख में सुख बुद्धि या विद्या का चौथा अंग है। समझे नहीं, अनित्य में नित्य बुद्धि, अविद्या का पहला अंग है, असूची में सूची बुद्धि, अपवित्रता में पवित्र बुद्धि, यह अविद्या का दूसरा अंग, अनात्मा में आत्मबुद्धि अविद्या का तीसरा अंग, और दुख रूप में सुख बुद्धि यह अविद्या का चौथा अंग। पंडित जगद्धर भट्ट ने लिखा है स्तुति कुसुमांजलि में अनित्य नित्यासम अशुचि निशुचित्व व्यसनिता अनात्मन्यात्मस्थाम अतमहति दुखे सुखमिति। आधे लाइन में ही अविद्या की व्याख्या कर दी है। चतुर्ता चतुर्धा दुर्भेद्याम, चार भेद वाली यह अविद्या कैसी है? दुर्भेद्यम अवितर अविद्याम, दुर्भेद्याम अविद्याम, ये साधारण प्रयत्न से, साधारण उपक्रम से, साधारण अभ्यास से ये चार अंग वाले अविद्या को तुम भेदन नहीं कर सकते, इसलिए दुर्भेद्याम। चतुर्धा दुर्भेद्याम अवितरम अविद्याम परिणताम हताशेषस्वाभम अभिदति मूलम भवतरो। और ये अविद्या क्या है? चार अंग वाले अविद्या भवतरो, ये संसार वृक्ष के रूप में खड़ा है। चार अंग वाला ये अविद्या, यही मूलम भवतर ऊर्धमूलम दशाकम अश्वत्तम प्राप्त छंदांसी अस्य पर्णानि स्तंभेद समेदपित अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चाद्र न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंगता रूपी अस्त्र के अलावा इस संसार वृक्ष को काटने में और कोई साधन उपयोगी नहीं है, असमर्थ है। असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा ही यह संसार वृक्ष को काट सकते हैं। यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ कहां से? तो बोले यही जो चार अंग वाला अविद्या है, यह मूलम भवतरो संसार वृक्ष का मूल है, इसी में यह संसार वृक्ष खड़ा हुआ है। तो हे शिवा, आपकी कृपा से वो मूल उच्छेद हो गया भाई। आद्या विद्या ऋतगता निर्गता सीत, क्योंकि विद्या ऋद्या ऋद्गता तत्प्रसादा, आपकी कृपा से इस संसार वृक्ष के मूल को काटकर उखाड़कर फेंकने में समर्थ विद्यैव तन्नास विधौ पटीयसी, रामगीता। उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में ब्रह्म विद्या ही सक्षम है, उसके अलावा अन्य न कर्म तज्जम सविरोध मीरितम। कर्म, योग, उपासना, भक्ति ये सब उस मूला विद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ नहीं, विद्या ही समर्थ है। और ब्रह्म विद्या वही समर्थ है और नहीं, विद्या ही वत्तन्नास विदौ पटीय से न कर्म। क्यों महाराज, कर्म क्यों नहीं समर्थ? बोल तजम उसी अविद्या से उत्पन्न हुआ हुआ कर्म क्या अविद्या को उखाड़ के फेंकने में समर्थ होगा? है? बोलो, मिठाई खा खाकर शुगर बढ़ा है और शुगर को घटाने में मिठाई समर्थ होगी? बोलो, है? जिस मिठाई खा खाकर शुगर बढ़ गया है उस शुगर को नष्ट करने के लिए मिठाई समर्थ है? नहीं है। तब क्या उसके विपरीत, मीठा के विपरीत कड़वा खाना पड़ेगा। नीम पत्ता खाओगे तब जाकर उसको घटाने में समर्थ होगा। इसलिए नीम पत्ता ही, करेला ही उस मिठाई खाकर पैदा हुआ हुआ शुगर को घटाने में समर्थ है। विरोध है ना, क्योंकि मिठाई के विपरीत करेला उसका विरोधी है। इसलिए कर्म अविद्या को नाश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अविद्या से ही तो कर्म पैदा होता है। अज्ञान हुए बिना कर्म होगा? अविद्या के बिना कर्म होगा? और आगे कहते हैं शंकराचार्य जी, हमारे मोहनीश के हिसाब से दिन में 400 लोग होने चाहिए। चिंता न कर बेटा, पूरा करूंगा। है एक छक्का लगे तो पूरा हो गया ना। है अभी तो 2 बॉल बाकी हैं, 2 दिन बाकी है ना। है 16 कितनी बाकी हैं? अब 9, तो 2 छक्के में तो गए। एक दिन में 6 श्लोक कर देंगे तो गया, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चिंता न करो बेटा। दूरी कृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुख दुरहंकृति दुर्वचांसी सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समामिह समुद्धर सत्कटाक्षी। संबोधन है गौरी शाह। हे गौरी के पति, गौरी के स्वामी, गौरी के ईश्वर, गौरी शाह, गौरी के मालिक। दूरक्षराणी, उसका क्षरण करना बहुत कठिन है। दूर दुखेन क्षरयितुं शक्य तानि दुरक्षराणि कानि दुरितानि। जीवन के अनेक जन्मों में अर्जित पाप समूह, अनेक अनेक जन्म से उपार्जित पाप समूह दुरितानि हैं, दूर क्षराणि। इन दुरितों को तुम साधारण कर्म से नाश नहीं कर सकते हो। अनेक जन्म में हुए किए हुए पाप को एक जन्म में एक बार हरिद्वार गंगा गोता लगाने से सब नष्ट हो जाएगा, समझते हो? तुम इस भ्रांति में नहीं रहना। अनेकानेक जन्म में अर्जित जो पाप समूह है वह एक दिन के एकादशी करने से नष्ट हो जाएगा, इस भ्रांति में नहीं रहना। 3-3 वर्ष तक किया हुआ पाप पुरुषोत्तम महीना 1 महीने में व्रत करके नष्ट करूंगा, ये भ्रांति में नहीं रहना भाई। है फिर भी तुम कर रहे हो, करो, कुछ तो कुछ कम होगा। कुछ तो कुछ कम होगा, नहीं होगा ये बात नहीं है, नत्र शास्त्र गलत हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ लेना कि वो पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, कुछ कम होंगे। इसलिए करते रहो, नहाते रहो गंगा जी। 12 वर्षीय कुंभ मेला आ रहा है, गोदावरी नहाने के लिए चले जाना। करते रहो, करते रहो। लेकिन ये निश्चित कर लो, हिसाब लगा लो, तुम खुद ही, हमको कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही हिसाब लगा लो। दैनंदिनी में हमारे कर्म में पाप कर्मों की संख्या ज्यादा होगी कि पुण्य कर्मों की संख्या, स्वयं कैलकुलेशन कर लो भाई, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति यही कहेगा कि मैंने तो कोई पाप किया नहीं है। अरे तुम्हारे कहने से होगा, तुमने पाप नहीं किया? तुमने पाप किया कि नहीं किया ये तो तुम खुद जजमेंट हो गए। न्यायाधीश बनना चाहते हो आप? नहीं है। शास्त्र क्या कह रहा है? गुरु क्या कह रहे हैं? शास्त्र क्या कह रहा है? गुरु शास्त्र आदि जजमेंट करें तो फिर मान लेना, नहीं तो अपने आप मैंने कोई पाप नहीं किया करके बैठकर आत्मसंतुष्टि हो सकती है, इससे पाप कम नहीं होने वाले। आत्मसंतुष्टि हो सकता है। तो फिर कौन नष्ट करेगा? दुरक्षराणि दुरितानि दूरीकृतानि तत्प्रसादात्। ये आपकी ही कृपा से मैं उन पाप समूहों को हटाने में समर्थ हुआ। और आगे क्या किया? दौर्भाग्य दुख दुरहंकृत दुर्भचांसी। तो अब मेरा दुर्भाग्य भी चला गया। वो दौर्भाग्यम और तज्जन्य दुखम और तत्संबंधी अहंकृति अहंकार दुर्वचांसी सब दुरितानी। ये दुरितानी के विशेषण है सब। दुर्भाग्य दुरितानी, दुख दुरहंकृति दुरितानी, दुर्वचांसी दुरितानी, सब दूरीकृतानी दुरितानी दुरक्षराणी। सारम त्वदीय चरितम नितरां पिबन्तम्। नितरम नित्य निरंतर सर्वथा भावेन त्वदीय चरितम चरितामृत। नित्य निरंतर आपके दिव्य चरित्र रूपी अमृत के पान करने पर सारम त्वदीय चरितम नितराम पिबंतम मामिह समुद्धरा सत्कटाक्ष। तो मैं सर्वथा दुरितों से मैं मुक्त हो चुका हूं, इसीलिए माम समुद्धरा इह इसी जन्म में यही मैं जहां पर हूं, यही जिस योनि में हूं उसी योनि में इह माम समुद्धर सत्कटाक्ष। माम समुद्धर सत्य रूपी दृष्टिपात करके मेरा उद्धार करो। सत कटाक्ष सत ब्रह्म सत तत्व। तो कटाक्ष माने दृष्टिपात। आपके सत कटाक्ष होगा तो मेरा उद्धार होगा। इसी जन्म में आप मुझे कृपा करके मेरा उद्धार करें, क्योंकि मैंने जो करना था तो वो तो कर दिया आपकी कृपा से। दुरक्षराणी नष्ट करना बहुत असंभव था आपकी कृपा न होती तो, लेकिन वो आपकी कृपा से सभी दुरितानी दुरक्षराणी नष्ट कर दे दूरीकृतानी। इसलिए अब मेरा उद्धार करिए। महर्षि दुर्वासा जी ने परसंभु महिमना स्तोत्रम की रचना की है, जैसे पुष्पदंताचार्य जी ने शिव महिमना स्तोत्र की रचना की, वैसे परशुराम ने शंभो महिमना स्तोत्रम करके रचना की है। तो उसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया है।
जातिर लज्जा निज कुल मदह सर्वसंसित्व त्वरार्धिर देहाहंता स्वकृत दुरित द्वंद पाशो अभिमान।
यही दुरित है, है? जातिर, जाति का अभिनिवेश, लज्जा, निज कुल मद, जिस कुल में पैदा हुए हैं उसी कुल का अभिनिवेश, निज कुल मद। तुम क्या समझते हो हम ब्राह्मण कुल के? तुम क्या समझते हो हमारे बाप दादे मूर्ख नहीं थे, पढ़े लिखे थे? यही मद कुल, निज कुल मद है।
अरे भाई हमारे पिता बड़े अफिसर थे।
अरे तेरे पिता अफिसर थे तो क्या है? लोग जो है ना अपनी अहम को अन्य के कर्म के साथ जोड़कर कहते हैं, महाराज हमारे पिताजी हमारे दादाजी बड़े शिव भक्त थे, नित्य निरंतर घर में रुद्राभिषेक करते थे, भागवत पढ़ते थे, वेद पढ़ते थे, पूजा करते थे, और हमारे पिताजी और दादाजी ने कितने पुस्तकें अलमारी में भर के रखी है, पेन अभी देखने जाओ बहुत पुस्तकें हैं। अरे बाबा ये सब तो ठीक है, तू क्या कर रहा है? तेरे दादा पूजा करते तू क्या कर रहा है? तेरे बाप दादा जो है भागवत पढ़ते थे तू क्या कर रहा है? तेरे दादाजी जो है रुद्राभिषेक करते थे तू क्या कर रहा है? मैं ये कर रहा हूं तो नहीं बोलता, कहता क्या है, दादाजी करते थे, बाबा जी करते थे, मेरी मां करती थी, अरे तू क्या कर रही है? नहीं? एक बहन कहने लगी, महाराज मेरे पिताजी मेरी मां हमारे घर में कहीं ना कहीं से संत खोज खोज कर ला के बुला के खाना खिलाते रहते थे, अक्सर रोज कोई ना कोई साधु संत भोजन के लिए आया करते थे। अरे भाई तू क्या कर रही है? हैं? तेरी मां ने तो किया, तू क्या कर रही है? हैं? तो यही निज कुल महम,
जातिर लज्जा निज कुल मद सर्वसंसित्वरार्धि देहाहंता,
अपने शरीर में अहमपना, स्वकृत दुरित द्वंद पाशो अभिमान,
सर्वे हेते, ये जितने भी थे ये सब क्या है, मां विनिहतास, सर्वे हेते मम विनिहतास,
आज वे सब मेरे जीवन से नष्ट होके चले गए।
सर्वे हेते मम विनिहतास तन्महावाक्य सूर्य,
आपके द्वारा प्रदत्त महावाक्य रूपी प्रचंड प्रकाश के सामने ये सब क्या हुआ,
ज्योतिपुंजयी किम परमहम देवभद्रम समी है,
ये सब चले गए। तो आपके द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश महावाक्य रूपी सूर्य के प्रकाश के चलते ये सब जाति कुल अभिमान मद घमंड ये सब के सब दुरितानी दूर अक्षरानी दुरितानी दूरीकृतानी हटा दिया। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया था, कहते हैं रात्रि में सूर्य न होने के कारण तारों का प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है। अब कभी कभी चंद्रमा के प्रकाश का भी सहारा लेना पड़ता है, मोमबत्ती का, टॉर्च का, ये सब विकल्प हैं, सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जब दिन में प्रचंड सूर्य का प्रकाश उदित होता है उसके सामने, सभी आलंबन निरस्त हो जाते हैं, अनुपयुक्त हो जाते हैं। तो महावाक्य जन्य ज्योति पुंज के चलते हे शिव, उस प्रकाश के सामने विशाल दूरितानी दूरीकृता खत्म हो गए। और आगे क्या कहेंगे कल करेंगे, चिंता नहीं करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।